ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से 3 हफ्ता हमारा भगवद गीता पर चर्चा नहीं हुआ था। 4 हफ्ते हाँ, गीता कोर्स बीच में था, तो ठीक है। 1 महीने पश्चात पुनः हम भगवद गीता का 2रा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की व्याख्या कर रहे थे। याद है, बहुत से कछुओं को देखकर आया हूं मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। तो अपने पिछली सिटिंग में हमने भगवान द्वारा ये कछुए का उदाहरण सुना, कूर्मोंगानिव सर्वश। कूर्म अर्थात एक कछुआ, और किसके संदर्भ में भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया था? इंद्रिय निग्रह। जिस प्रकार से कछुआ जब भी कोई खतरा महसूस करता है तो अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को वो समेट लेता है, उसी प्रकार एक दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति जब भी विषय वस्तु को देखता है, अपनी इंद्रियों के संदर्भ में विषय वस्तु को देखता है, तो अपनी इंद्रियों को कछुए के समान वो समेट लेता है। तो जब अर्जुन ने ये कछुए का उदाहरण सुना तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि हां, ये एक तरीका है इंद्रिय भोग से बचने का, या अपने आप को इंद्रिय भोग में नहीं लगाने का। परंतु अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। अर्जुन का यह प्रश्न था कि क्या इससे ऊंचा कोई स्तर है कि वो व्यक्ति इंद्रिय भोग में रहते हुए भी वो इंद्रिय भोग से प्रभावित न हो, अर्थात विषय वस्तु के संपर्क में आते हुए या रहते हुए भी वो विषय वस्तु से निरासक्त रहे। और यही भगवद गीता का गुह्य ज्ञान है, ये जो अर्जुन ने प्रश्न उठाया, क्योंकि अर्जुन अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, और अर्जुन के चारों ओर जो अर्जुन को प्रेरणा देने वाली कार्य हैं, जैसे कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, तो वो अर्जुन के चारों ओर है। तो यदि एक क्षत्रिय के विषय वस्तु की चर्चा हम करें तो क्या है? युद्ध, अस्त्र शस्त्र, खून खराबा, ये सब, इसमें इनको मजा आता है, क्षत्रियों को। अब यहां पर अर्जुन इन विषय वस्तुओं को, एक क्षत्रिय के विषय वस्तुओं को आसक्ति मान रहे हैं, ये नहीं जान रहे कि यह धर्म युद्ध है, ये कोई साधारण क्षत्रिय किसी दूसरे क्षत्रिय से नहीं लड़ रहे। साक्षात भगवान यहां पर उपस्थित होकर आदेश दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन का जो प्रथम अध्याय में यह भ्रम, तो उस भ्रम को बरकरार रखते हुए अर्जुन अब ये कूर्म का उदाहरण सुनने के पश्चात ये प्रश्न उठाए कि मैं जो घिरा हुआ हूं, एक क्षत्रिय जो मैं घिरा हुआ हूं, अपने इंद्रिय भोग विषय वस्तुओं से, तो इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हे कृष्ण हे गोविंद मैं कैसे इनसे निरासक्त रहूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न जब भगवान ने सुना, तो अगले श्लोक के पश्चात फिर आज का श्लोक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस दूसरे अध्याय का भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। विषयाविनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो कृत्रिम रूप से अपने आप को विषय वस्तु से अलग करने का प्रयास करता है, कृत्रिम रूप का अर्थ है आर्टिफिशियली, एनीवन हु आर्टिफिशियली ट्राइज टू सीज फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन माइट बी सक्सेसफुल फॉर अ वाइल बट द टेस्ट स्टिल रिमेन्स। उसका जो आस्वादन है किसका, चाहे वो अस्पताल में एक मरीज के रूप में पीड़ित होगा और उसे कुछ मिल नहीं रहा होगा उसके इंद्रिय भोग की वस्तुएं, लेकिन मन में वो उसके विषय में सोचकर उसका आस्वादन कर रहा है। ये मैंने उदाहरण दिया, भगवान ने दिया, लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हालांकि वो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली वो इंद्रिय भोग में नहीं लगा हुआ, लेकिन मन में उसका चिंतन कर रहा है अवश्य सी, लेकिन मानसिक रूप से भी सूक्ष्म तरीके से भी वो इस इंद्रिय भोग के परे जा सकता है। कब? जब उसे दिव्य रस का आस्वादन होगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, निवर्तते का अर्थ है उससे छूट जाना। परम दृष्ट्वा का अर्थ हम आज बहुत महत्वपूर्ण है, जो अंतिम लाइन है आज के श्लोक की। तो भगवान कह रहे हैं कि हायर टेस्ट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, परम दृष्ट्वा को क्या कहेंगे, हायर टेस्ट। व्हेन दैट प्रैक्टिसिंग डिवोटी अचीव्स हायर टेस्ट, ऑटोमेटिकली द लोअर थिंग्स लीव दैट पर्सन। तो यह हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी भी दशा कुछ ऐसी है। हमारी दशा वो उस कछुए के समान है कि जिसने अपने अंगों को तो अंदर कर लिया है, लेकिन एक कोने से देख रहा है कुछ तो मिल जाए तो, है ना। तो हमने चार नियमों के द्वारा अपने आप को वो कछुए के समान समेटने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नजर यहां वहां और मन में वो चिंतन इंद्रिय भोग का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए ये आज का श्लोक हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारे विषय रहेंगे सर्वप्रथम पिछले श्लोक से संबंध, निषेधात्मक प्रतिबंधों से विषय निवृत्ति। समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। भौतिक रस एवं दिव्य रस की व्याख्या और अंततः परम दृष्ट्वा निवर्तते जो भगवान ने कहा है उसकी व्याख्या। तो पिछले श्लोक से संबंध, पिछले श्लोक में कछुए का उदाहरण द्वारा इंद्रिय संयम की व्याख्या की थी, और आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को उस स्तर से उच्चतर स्तर पर ले जा रहे हैं कि हे अर्जुन, उत्तम रस का आस्वादन जब तुम कर लोगे तो ये जो निम्नतर स्तर के विषय वस्तु के प्रति आकर्षण है वो अपने आप छूट जाएगा। तो ये दोनों श्लोक का कनेक्शन है। तो निषेधात्मक प्रतिबंधों से विषय निवृत्ति। अब यहां पर देखिए, ये तीन उदाहरण शास्त्रों से श्री प्रभुपाद देते हैं कि जिन्होंने कृत्रिम तरीके से विषय वस्तु से परहेज किया, आर्टिफिशियली दे ट्राइड टू रेफ्रेन फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो निषेधात्मक प्रतिबंधों का अर्थ क्या है? प्रोहिबिटरी रेस्ट्रिक्शंस विच आर नेगेटिवली फोर्स्ड, इसका यह अर्थ है कि जब कोई, वो बोलते हैं ना कि जबरदस्ती और अपने मन को मारते हुए जब वो किसी कार्य को करता है तो हां वो कार्य कुछ हद तक वो कर पाता है, उसमें सफलता प्राप्त कर पाता है। जैसे कि खटमलों का उदाहरण दिया गया कि खटमल जो हैं वो कुछ समय के लिए कुछ ऋतुओं में दिखाई नहीं देते। यदि खटमल, खटिया में आपने पाए होंगे कभी, हम जब ट्रेनिंग में थे तो खटिया में इतने खटमल होते थे लेकिन साल के कुछ महीने वो खटमल कहीं दिखाई नहीं देते थे, तो हमको लगता था कि सारे मर गए या कई कहते छुट्टी पे गए होंगे। लेकिन उनका भी कोई सीजन होता है और जैसे ही वो सीजन आता है तो तुरंत वो सारे खटमल फिर परेड निकालते हैं अपनी, और वो अपनी कीर्तन पार्टी निकाल कर शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि हमारी इंद्रियां जब तक विषय वस्तु हमारे सामने नहीं आती तो लगता है कि हाँ शांत है, खटमल दिखाई नहीं दे रहे, इंद्रियां बस अब कोई परेशान नहीं कर रहे। जैसे ही कोई विषय वस्तु सामने आ गई फिर तुरंत, तो इसलिए कृत्रिम तरीके से निषेधात्मक प्रतिबंधों से नहीं होता। सो पहला उदाहरण अजामिल का है। हालांकि अजामिल वो एक शुद्ध ब्राह्मण था और ऐसे ऐसे ब्राह्मण के गुण उसके बताए गए हैं कि आजकल आप बड़े से बड़ा ब्राह्मण ले लो, उनमें से एक भी गुण जो अजामिल के अंदर था उसके निकट भी नहीं कोई आ सकता। ऐसे ऐसे अजामिल के ब्राह्मण के गुण बताए गए, अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय, सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बताते हैं कि अजामिल, हम लोग केवल अजामिल का पतन ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसने क्या देखा और क्या हुआ, लेकिन उससे पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अयम ही श्रुत संपन्न, श्रुति अर्थात सारे वेद वांग्मय से संपन्न अजामिल, शील वृत्त सुशील वृत्ति का गुणालय, सारे गुणों का आलय, ये अजामिल जब उसने वो दृश्य देखा। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अजामिल हालांकि नियमों का पालन कर रहा था परंतु परम दृष्टवा नहीं था। यदि परम दृष्टवा होता तो अजामिल में और ये बाकी जो विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर, इनका उदाहरण दोनों का दिया गया है, इनका कंपैरिजन किया गया है कि हरिदास ठाकुर के सामने तो वो माया देवी साक्षात अपने आप को अर्पित की, परंतु हरिदास ठाकुर क्योंकि परम दृष्टवा, और क्या परम दृष्टवा हरिदास ठाकुर का था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल वो कृत्रिम तरीके से जप नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा होगा कि हम भी तो माला ले लेते हैं जब भी कोई ऐसा अटैक होता है, और कई बार माला करते समय होता है ज्यादा, तो हरिदास ठाकुर वो जब माला करते हैं और हम जो माला करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो उस शुद्ध भाव से आस्वादन करते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं। कोई काउंटिंग बीड्स नहीं होता उनका, हमारा ध्यान काउंटिंग बीड्स में होता है ज्यादा, कि कितना नीचे गया कितना ऊपर है अभी तक। हालांकि हरिदास ठाकुर ने माया देवी को क्या बोला कि मेरे राउंड पेंडिंग है अब तक। तो ये इसलिए कि हरिदास ठाकुर कभी वो हरिनाम का जब बंधिनी करते थे तो उनके लिए 24 घंटा भी कम है, और हमारे लिए 2 घंटा वो 24 साल के समान लगता है 16 माला करते समय। तो अजामिल ने जैसे ही उस विषय वस्तु को देखा क्या हो गया, चल रहा है? तो अजामिल ने जैसे विषय वस्तु को देखा तो जो भी उसने इतने सारे नियमों का पालन किया था, ये विषय वस्तु वो सारे उसके नियमों को ढक दिया। यदि परम दृष्टवा होता तो ये छू भी नहीं पाता था उसके उस स्तर को, अजामिल के उस स्तर को। और विश्वामित्र मुनि, अब देखिए अजामिल, ये एक एक हम ये करेंगे कि हमारे आचार्य बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि उन्होंने वो भी जानते थे कि अजामिल के साथ क्या हुआ था। तो अब यहां पर अजामिल ने एक वैश्या और एक शूद्र को आलिंगन करते हुए देखा तो अजामिल भ्रमित हो गए। तो विश्वामित्र मुनि वो ऐसे स्थान पर चले गए कि जहां पर कोई आशंका नहीं थी कि कोई ऐसा दृश्य दिख भी पाए। तो देवराज इंद्र, उन्होंने विश्वामित्र मुनि के लिए कोई वैश्या या ऐसा कोई रोड छाप किसी को नहीं भेजा, एकदम ब्रांडेड माल। और इंद्र की मेनका और विश्वामित्र मुनि केवल उसके नूपुर की आवाज, यहां देखा भी नहीं, नूपुर की आवाज केवल मेनका की। तो यहां पर एक और हायर लेवल पर विश्वामित्र मुनि, हालांकि वो भी कृत्रिम तरीके से वो प्रयास कर रहे थे विषय वस्तु से दूर रहने का, लेकिन क्योंकि वो परम दृष्टवा नहीं था, भक्ति योग में नहीं स्थित थे, इसलिए केवल नूपुर की आवाज। तो अब सौबरी मुनि ने, वो जानते थे विश्वामित्र मुनि के साथ क्या हुआ। अब देखो वो दोनों का जानते थे स्टोरी, वो अजामिल का भी स्टोरी जानते थे और विश्वामित्र मुनि का भी स्टोरी जानते थे। तो सौबरी मुनि वो तो कहे कि मैं तो पानी के नीचे जाऊंगा अब, जैसे कि मैं अब जहां से आया वो क्रूज पर, तो वहां पर एक दिन उन्होंने रखा था स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग जानते हैं आप, पानी के नीचे 50 फीट पानी के नीचे, कितना 50 फीट पानी के नीचे, और वो भी विसर्जन के दिन रखा था अपना गणेश विसर्जन के दिन। तो मुझे लग रहा था देखो हर साल गणेश जी को हम इतना नीचे डालते हैं, वो इतना प्रेशर पानी का, और आसपास सारे जो ये कछुए और ये सब, इसलिए बोला कि बहुत निकट से कछुओं को देखा, और ये ऐसे बड़े बड़े ऐसे छोटे छोटे कछुए नहीं जो अपने इधर पॉन्ड में थे पहले, ऐसे बड़े बड़े कछुए और पता नहीं क्या क्या। तो सौबरी मुनि ने सोचा कि मैं तो ऐसी जगह चुनूंगा कि कोई वहां पर सिग्नल ही नहीं होगा माया देवी का, कोई नेटवर्क सर्विस नहीं, कहां जमुना के अंदर, पानी के अंदर। और सौबरी मुनि वो ऐसे स्कूबा डाइवर कि कोई सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं, बिना सिलेंडर, बिना वो मास्क के, और वो अपनी सांसों तक को भी रोक लिए थे। देखिए, मतलब ये कहा गया है कि यदि हम किसी को कहेंगे कि इंद्रिय भोगी है, चार नियम तोड़ रहा है, यहां पर सौबरी मुनि ऐसे इंद्रिय निग्रह में लगे हुए थे कि सांस लेना उसको भी इंद्रिय भोग मानते थे। वो सांस लेना, इट वॉज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर सौबरी मुनि, ब्रीदिंग, उसको भी रोक दिया, और वो भी जमुना के जल के अंदर, मतलब ब्रजमंडल में थे। और बताया गया है कि जब दो मछलियों को उन्होंने देखा संभोग करते हुए, तो यहां पर माया देवी किस प्रकार से कोई यदि कृत्रिम तरीके से प्रयास में लगा हुआ है तो परम दृष्टवा नहीं है, परम दृष्टवा दिलाने के लिए, ये जो भी उदाहरण है इनको आगे चलकर परम दृष्टवा मिला, अजामिल, विश्वामित्र मुनि और सौबरी मुनि, लेकिन ये दर्शाने के लिए कि कैसे भक्ति योग ही एकमेव उपाय है, ये निषेधात्मक प्रतिबंधों से विषय निवृत्ति से निवृत्ति, केवल परम दृष्टवा ही एकमेव उपाय है। तो अब यहां पर इस श्लोक में भगवान भौतिक रस एवं दिव्य रस इनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो भौतिक रस इस संसार का, हां उसमें भी रस है, ये नहीं कि उसके अंदर रस नहीं है, उसको संस्कृत में उपनिषदों में कहा गया जड़ रस, और एक है दिव्य रस। तो जड़ रस जो है वो हमारे शरीर के स्तर पर रहता है, जो भी कुछ हम शरीर के स्तर पर करते हैं वो जड़ रस है, और दिव्य रस या आध्यात्मिक रस वो आत्मा के स्तर पर। तो एक मुझे उदाहरण याद आया, बचपन में हम लोग, आप लोग भी ये खेल खेले होंगे बचपन में, ये खाली सिगरेट के पैकेट होते हैं ना, है ना, खाली के सिगरेट, खाली सिगरेट के पैकेट लेकर उनको एक मूल्य देना, है ना। तो अब वो सिगरेट का जो ब्रांड है उसके ऊपर उसका मूल्य दिया जाता था कि ये मतलब थोड़ा सस्ते से सस्ता, हाँ मुझे तो इतना ज्ञान नहीं लेकिन सुना है, हाँ इससे भी सस्ता चार मीनार था क्या, ये एक ही है क्या, वही कंपनी है क्या, अच्छा ठीक। तो हम लोग इसको मतलब 100 रुपया ऐसे टाइप, फिर इससे भी ऊंचा कोई होता तो 200 रुपया, फिर 300, 400, 500 रुपया, फिर कोई और आगे चला गया 700, 800, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आ गया उसका 1000 रुपया कीमत रखते थे। तो कोई बच्चा है ना पान बीड़ी की दुकान, उसके वहां पर उसने कोई मालब्रो या विल्स गोल्ड फ्लेक इसका पैकेट ढूंढ लिया, दूसरे को ए, मेरे को 1000 रुपया मिला, अरे वो पान बीड़ी वाला हंसता है 1000 रुपया मिला, अरे खाली पैकेट है, कोई मूल्य नहीं है उसका। और फिर लास्ट में होता है गणेश बीड़ी कि उसका भी मूल्य लगाते थे। तो ये जो जड़ रस है इस भौतिक संसार का, ये शुरुआत होता है गणेश बीड़ी से कि जो पशु हैं बाकी वो लोग लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग में, फिर कोई आता है चार मीनार, पनामा, इसमें उसमें, फिर वहां तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, महर लोक, तपर लोक, ये सब विल्स गोल्ड फ्लेक, ये सब माल, लेकिन सारे खाली पैकेट है, सारे खाली पैकेट है। तो ये है भौतिक रस जिसको मूल्य हमने दिया है, जैसे बचपन में हम जो गेम खेलते थे इसको मूल्य किसने दिया था, हमने दिया था, ये 1000 रुपया, ये वो ये वो। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति इस खेल को देखता है तो हंसता क्यों है, क्योंकि ये हमने मूल्य निर्धारित किया है। तो वैसे ही भगवान जब हमारे साम्राज्यों को देखते हैं, ये बड़े बड़े हम मनुष्यों ने साम्राज्य खड़े कर रखे हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के जड़ रस का प्रयोजन कर कर रखे हैं, योजनाएं बनाए और बना रहे हैं, तो वैसे ही भगवान भी हमको देख के हंसते हैं कि ये क्या, कौन से भ्रम में ये लोग जी रहे हैं। तो भौतिक रस और दिव्य रस की व्याख्या इस प्रकार से शुरू होती है। और हमारे उपनिषदों में ये उदाहरण दिया गया है भौतिक रस और दिव्य रस की तुलना में, कि भौतिक रस जो है वो स्वप्न अवस्था है। इसलिए हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराम निबोध, कि हे जागो, सबसे पहले जीव जागो, वहां से शुरुआत होती है। तो यदि उपनिषद ये कह रहे हैं कि हमें जागना है, अर्थात हम सो रहे हैं ना, यदि कोई हमें उठा रहा है मतलब अभी हम सो रहे हैं। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि सोया हुआ है तो उसे कोई भान नहीं कि वो कौन है कि नहीं। हम जब सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि हम कहां सोए हैं, कौन सी पोजीशन में सोए हैं, हमारे बगल में कौन सोया है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, हालांकि कुछ नहीं हो रहा है, हम केवल एक मुर्दे की तरह लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था, है ना। तो ये उदाहरण उपनिषद में दिया गया है कि इस भौतिक संसार में ये शरीर तो मरा हुआ है पूरा, जैसे कि सोते समय ये मुर्दे के समान ये शरीर कुछ नहीं कर रहा। अब इस भौतिक संसार में इस मरे हुए शरीर के अंदर जब हम अलग अलग प्रयोजन करते हैं इंद्रिय भोग का, तो वो स्वप्न अवस्था में वो जो आस्वादन कर रहा है तथा कथित, उसकी तुलना उससे दी गई है। तो यही ये जो मैंने श्लोक लिया उपनिषद का, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत, कि हमें उठने के लिए ये शास्त्र कह रहे हैं। तो ये स्वप्न अवस्था का उदाहरण लेकर मैं थोड़ा और इस पर रिसर्च कर रहा था कि कोई व्यक्ति स्वप्न अवस्था में किस हद तक जा सकता है। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं और स्वप्न देख रहे हैं भौतिक रस का, है कि नहीं। और उस भौतिक रस के स्वप्न में हम किस हद तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि एक होता है, आप लोग, ये इंग्लिश टर्म है स्लीप वॉकिंग। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो पहले हमारे बैच का था, उसे बीमारी थी। आपने किसी को देखा, अपने नींद में चलना, अब उसे पता नहीं वो चल रहा है, उसे कुछ पता नहीं वो चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है। और कई बार वो घूम के आ जाता है, वापस अपने बिस्तर पर लेट जाता है। ऐसी भी स्थितियां होती है, मतलब उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही, उसे कुछ नहीं पता कि वो कहां गया, क्यों गया। तो ये स्लीप वॉकिंग ये बहुत डेंजरस, दूसरे लोग देखते हैं तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जीवित है, मुर्दा है, बीच में क्या है ये? तो उसी प्रकार से ये जो स्लीप वॉकिंग है, जिसके अंदर व्यक्ति स्वप्न अवस्था में, सोए हुए अवस्था में वो घूम रहा है, लेकिन उसके घूमने का कोई मायना है? सुबह उठने के बाद यदि कोई उसे पूछे कि भाई तुम तो बिग बाजार जाके आए रात को, मैं बिग बाजार, या वो कहे कि मैं बिग बाजार जाके आया, तो हालांकि वो घूम रहा है लेकिन उसके घूमने का मायना क्या है? वो फिर भी स्वप्न अवस्था में है। तो यही भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका, अगर कोई सत्य लोग भी पहुंच जाए तो क्या है, स्लीप वॉकिंग चल रहा है उसका, वो फिर भी भौतिक संसार में ही है, वो अब तक दिव्य रस को प्राप्त नहीं हुआ है, ही स्टिल इन डीप स्लंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। फिर स्लीप टॉकिंग होता है ना, जैसे मेरा एक मित्र बता रहा था, ये क्रूज पर भी था, वो मेरा क्लासमेट था, तो बॉम्बे से ज्वाइन हुआ था वो, तो बता रहा था ऐसे मजाक में कि जब शादी हो जाती तो पत्नी कुछ सुनती नहीं, फिर एक ही तरीका है पत्नी को सुनाने के लिए कि नींद में बोलना शुरू करो, वो भी किसी और का नाम, तो अपने आप सारे कान खड़े हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, ये भी हमारे जब ट्रेनिंग में, क्योंकि इतना परेशान होकर सब प्रकार से वो ट्रेनिंग में नहीं लेके रात को सोते थे, तो अभी हमारा वो डॉर्मेटरी टाइप था, तो उसमें बगल वाला रात को 2-3 बजे कुछ बोलना शुरू कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बोल रहा, लेफ्ट राइट, अरे लेफ्ट राइट सुबह हो रहा, अभी से तुम लेफ्ट राइट शुरू कर रहा। तो कितनी बार ये होता है स्लीप टॉकिंग, तो जो भी बड़बड़ा रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे ही जो भौतिक स्तर पर प्रजल्प में लगा हुआ है उसकी भी अवस्था ये स्लीप टॉकिंग के समान है, उसका बड़बड़ाना कोई मायना नहीं रखता। ये बहुत खतरनाक है, अभी तक तो हम उसको थोड़ा मजाक में ले रहे थे, लेकिन कोई स्लीप ड्राइविंग तो यहां पर तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और इसलिए आजकल एक एंटी स्लीप अलार्म बनाया है विदेशों में, कि यहां पे कान में यहां पीछे घुसेड़ देते हैं अंदर, और फिर उसको पता नहीं कैसे बचता होगा, लेकिन ये बताया गया है कि वो जब भी जम्हाई लेता है, जो भी लेता है, तो यहां पे उसको कुछ करंट वरंट लगता है या वो बोलना शुरू करता है उसको उठाने के लिए। तो यदि कोई ड्राइविंग करते समय सोना शुरू कर दे, या सोते हुए ड्राइविंग करना शुरू कर दे। अच्छा, एक और चीज यहां पर, तो अभी मुझे याद आया, हमने स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप ड्राइविंग किया, आपको पता है इस्कॉन के मंदिर में स्लीप हियरिंग होता है? और मतलब उसमें बहुत से पीएचडी हासिल कर लेते हैं। मुझे याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में एक हमारे ब्रह्मचारी, जैसे ही क्लास शुरू होता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो नमाज पढ़ना शुरू करते थे। और एक दिन तो हद हो गई, पूरी क्लास में उनका सर दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा नीचे दंडवत में ही था उस अवस्था में। और जैसे ही स्पीकर ने कहा ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, एनी क्वेश्चंस, तो इन्होंने हाथ ऊपर किया। मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा है, मतलब हद हो गई। तो यहां पर कुछ हियरिंग भी चल रहा होगा शायद, स्लीप हियरिंग, और क्वेश्चन पूछ के फिर से वापस एज इट इज। तो स्लीप ड्राइविंग, अब स्लीप ईटिंग बताया गया है कि कोई यदि सपने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, मतलब ऐसा सैंडविच असली में तो नहीं खा सकता कोई इतना बड़ा, ये सपने में ही खा सकता है ऐसा इतना बड़ा, तो यदि सपने में कोई बहुत बड़ा फिस्ट खा रहा है लेकिन उसका पेट नहीं भरने वाला है उससे, वैसे ही भौतिक रस में यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो वो हमें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। स्लीप ड्रिंकिंग, ये एक और उदाहरण दिया गया है कि आपको असली में प्यास लगी हुई है, आप सोए हुए, कई बार रात को प्यास लगती है ना, लेकिन आप इतने नींद में हो कि आप उठ के पानी नहीं पी पा रहे, तो सपने में आप ना बिस्लरी ये वो पता नहीं क्या क्या है ना, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स सब अंदर कर लिया और आप बाल्टी भर भर के पानी पी लिया, किसमें, सपने में। तो उठने के बाद आपकी प्यास, ये नहीं कि सपने में आपने इतना पानी पिया है तो उठने के बाद आपकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं, वो प्यास वैसी की वैसी रहेगी। तो वैसे ही भौतिक स्तर पर जो भी इंद्रिय भोग का प्रयोजन हमारा रहता है, जब तक परम दृष्टवा नहीं है, जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक वो हमें संतुष्ट नहीं करने वाला। तो एक छोटा सा एक मिनट का वीडियो आपको दिखाएंगे कि कोई स्वप्न अवस्था में, कोई सुप्त अवस्था में, ये चल रहा है, हालांकि साउंड इतना नहीं है उसमें, फिर भी चला दो, कि कोई सोते हुए भी, हालांकि उसे कोई भान नहीं है लेकिन फिर भी सोते हुए कैसे जो सूक्ष्म शरीर है वो जागृत रहता है, और सूक्ष्म शरीर का जागृत रहना, मन का जागृत रहना, ये इंडिकेशन है कि आत्मा अंदर है जो कि लालसा कर रहा है कि तुम सही रूप से जागो, दैट इज एन इंडिकेशन। अब ये सच में वीडियो निकाला गया है, देखिए ये बच्चा, अब ये बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है, तो जैसे को इसको कंडीशनिंग हो गया है कि वो नल चालू रहेगा तो नींद आती है ना, तो वैसे ही कई बार हम इस्कॉन में कंडीशनिंग कर लेते हैं, जैसे ही माला हाथ में लिया है ना, ऐसे ऐसे घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे डिवोटी बने हैं जिनको इंसोमनिया का प्रॉब्लम था, स्लीपलेसनेस, और जैसे ही माला हाथ में ली ऐसी सुख की नींद शुरू हुई उनकी कि उसके वजह से उन्होंने माला कंटिन्यू किया। तो ये एक और स्वप्न, अर्थात हम लोग यहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि भ्रमित अवस्था में, कि जब हम भ्रमित अवस्था में सोचते हैं कि हां ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये कार्य मुझे पूर्ण रूपेण संतुष्ट करेगा, तो अब भौतिक रस का उदाहरण छिलके के रस से दिया गया। ये किसका छिलका है? संतरे का छिलका। तो अब संतरे का छिलका आप लो तो संतरे के छिलके में थोड़ा सा संतरे का रस मिलेगा, उसको पूरा यहां वहां आप निचोड़ो, थोड़ा सा रस मिलेगा उसमें से, लेकिन क्या आप उस रस से संतुष्ट हो पाओगे? नहीं, कभी नहीं। तो उसी प्रकार से क्योंकि आत्मा में असली रस है तो इसलिए ये शरीर के अंदर भी कुछ रस दिखता है, क्यों? क्योंकि आत्मा अंदर है। जो भी हमें शारीरिक स्तर पर रस मिलता है तो ये शरीर है क्या? छिलका। जैसे कि संतरा है और संतरे का छिलका, तो आत्मा है और आत्मा का छिलका, क्या है? ये शरीर। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? पूरा मनुष्य समाज छिलके के पीछे पड़ रहा है, मतलब संतरे को तो फेंक दिया हा? और छिलके के पीछे लगा हुआ है कि छिलके का गुणगान चल रहा है कि छिलका कितना सुंदर है, छिलके को ताज पहनाया जा रहा है मिस यूनिवर्स है क्या? छिलका ही है खाली, मिस्टर यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बस छिलकों को बनाया जा रहा है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हां उसमें रस है, भगवान कह रहे हैं यहां पर आज के श्लोक में, लेकिन परम दृष्टवा नहीं है। इसलिए परम दृष्टवा के लिए जब तक कि हम वो फल, अब देखिए किसी को यदि पता ही नहीं है कि ये संतरे का जो छिलका है इसके अंदर संतरा भी था, सोचो वो जिंदगी भर केवल छिलके में ही आस्वादन ढूंढ रहा है, निचोड़ निचोड़ के, अरे कितना कितना अच्छा लग रहा है, और उसको फिर किसी ने बताया अरे मूर्ख असली संतरा है उसके अंदर जिसके अंदर इतना रस है। तो वैसे ही हम जब भक्ति के संपर्क में आए तब हमें समझ में आया श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि अब तक हम छिलके के पीछे भाग रहे थे ना? और अब असलियत में जो आस्वादन है रस का, वो तो श्रील प्रभुपाद ने क्या खोल रखा है, इसका मतलब रसवंती ग्रह और हम अब तक रसवंती ग्रह के पीछे थे, वो जो गन्ने फेंके हुए रहते ना पीछे, उनको उठा उठाए उनको उठा उठाए इसमें से कुछ मिल जाएगा। तो क्या होता है, कई गन्नों में थोड़ा सा एक हाथ बूंद रस रहता है, तो किसको मिल गया तो वो सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति, ये देखो मेरे को दो बूंद मिला, और पता नहीं कि असली रस तो वहां निकल रहा है, यहां पे तो खाली छिलके फेंके जा रहे हैं। तो हम लोग अब तक क्या, वो रसवंती ग्रह के पीछे यहां वहां झगड़ा कर रहे हैं, इस योनि में उस योनि में, इसको चूस रहे हैं उसको चूस रहे हैं, हाँ इसमें रस, और फिर हमको आगे लाया गया, दिखा इधर बैठो, और श्रील प्रभुपाद और सारे आचार्य वो इस रसवंती ग्रह में कर क्या रहे हैं, सब गन्नों को इकट्ठा कर वहां से वो जो भी होता है उसका मशीन, उसमें से वो गन्ना निकाल कर और फिर रस तैयार कर उसमें थोड़ा मसाला मार के, है ना, थोड़ा नींबू अदरक सब कुछ मार के, थोड़ा बर्फ भी, क्योंकि इतनी गर्मी है संसार दावानल, थोड़ा बर्फ भी डाल के उनकी कृपा डाल के, और फिर हमारे सामने वो रख रहे हैं कि केवल इसे पियो। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो है परम दृष्टवा। अब परम दृष्टवा की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बचपन में ये सारी चीजें, ये हमारा परम उद्देश्य था, खिलौने, कि मुझे यदि खिलौना मिल जाए तो बस इस सारी दुनिया में सारे दुख मिट जाए, ये दुनिया के सारे दुख इसलिए ही हैं क्योंकि मुझे खिलौना नहीं मिला ना। तो बचपन में हमारा रस कौन से स्तर पर था? बस ये खिलौनों के स्तर पर। तो इसे कहा गया है चाइल्ड्स टॉय, फिर वो बड़ा होता है ये फादर्स टॉय, कि ज्यादा कोई अंतर नहीं हुआ है, खाली वो जो खिलौना उसकी साइज बढ़ गई है, उसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन है वही क्या है? चाम्स पनामा गणेश बीड़ी है ना, गणेश बीड़ी करके वही चल रहा है। तो हम उसी में रचे पचे हैं कि कैसे, तो यहां से वहां यहां से वहां, उस भौतिक रस में, उस जड़ रस में। तो परम दृष्टवा, अब जैसे अब देखिए छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को जब खिलाना शुरू करते हैं तो छोटे से बच्चे को कैसे खिलाते हैं? सब कुछ पीस दिया है ना, मान लो आज आपको आज का डिनर ऐसे सर्व किया जाए, हा? राइस दाल सब्जी, जानकीनाथ प्रभु बड़े मिक्सर में पूरा पीस रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कोई चटनी बन रही, नहीं, जो आज का मेनू वो पूरा पीसा जा रहा है, उसके अंदर स्वीट राइस भी सब कुछ पीस दिया, दाल और स्वीट राइस सब कुछ, तो हमारा भी चेहरा ऐसा ही रहेगा। अब इसको बेचारे को इतना उसके उसके जीवा को यही टेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ही हम अब अभी जो हमारा स्तर है, इस स्तर पर जो जड़ रस में लगे हुए हैं, तो ये हमारा टेस्ट बर्ड्स केवल इतना ही हमने विकसित किया है, जैसे कि ये छोटा सा बच्चा। और अब देखिए कि इस बच्चे के सामने आप फीस्ट रख दो, पूरा पूरा संडे फीस्ट रख दो, तो बच्चा इधर देख के नहीं हंस रहा, ऊपर देख के हंस रहा है, ये तो मतलब पागल है, ये कोई खाने की चीज होती है, अरे सब पीस पास के लाओ। तो वो हम उस पे हंस रहे, वो हमारे पे हंस रहा है, वो देखो कहां देख रहा है। क्योंकि उसके वो टेस्ट बर्ड्स अभी विकसित ही नहीं हुए, इसलिए आप देखो कि बच्चे जो हैं, उनको जब वो जो भी फेरेक सेरेलैक जो भी कुछ माताएं खिलाती हैं, तो इतना उनको पुचकार पुचकार के, बेटा ये ऐसे ऐसे देखो घूम के आया, वो चम्मच को लेते हैं, देखो देखो कैसे वो घूम के आया, देखो हवाई जहाज घूम के आया बच्चा, देखो मुंह खोला अंदर जाएगा, मुंह खोला अंदर गया। फिर उसको रोना शुरू करता, मेरे खिला दिया मेरे को, तो उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है इस बच्चे को, अलग अलग तरीके से वो माता, कभी कभी लिविंग रूम में, कभी किचन में, कभी टॉयलेट में, कहां कहां वो लेके सेरेलैक का कटोरा लेके उसको बच्चे को, और वो बच्चा रोए जाए, नहीं खाना। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अब वो प्लेट ले लेके भाग रहा है, कहां मिले खाए, खाने के लिए कहां मिले, पापी पेट का सवाल है, कुछ खाने के लिए दीजिए। अब उसको बोलता जाता है, अरे बंद कर, बस हो गया, अब उसको मना करना पड़ता है। तो क्या अंतर क्या हुआ कि उसे हायर टेस्ट। हम लोग जो बचपन में केवल वो पिसा हुआ दाल चावल या सब्जी उबली हुई वो, और जो सेरेलैक फेरेक्स इसके ऊपर रहे, अभी अगर हमको किचन डिपार्टमेंट जानकीनाथ प्रभु आज दे सेरेलैक, क्योंकि हमारा टेस्ट बर्ड्स बढ़ चुका है। तो वैसे ही भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि जो उस दिव्य रस का आस्वादन कर लेता है, कितनी बार आपको, आप जब किसी स्टोर में गए हो तो वहां पे सेरेलैक के डब्बे को देख के मुंह में पानी आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हायर टेस्ट हो गया है, तो बिल्कुल वहां उसको देख के कोई मन लालायित नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो दिव्य रस के स्तर पर पहुंच जाता है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर उसे इस भौतिक संसार के जो भी तथा कथित रस हैं उसमें कोई आस्वादन नहीं होता। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसकी व्याख्या यदि हम प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम दृष्ट्वा, यह संस्कृत का जो शब्द है इसका एक अर्थ है देखना। तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन दृष्ट्वा का एक और अर्थ संस्कृत में बताया गया है पहचानना। तो देखने में और पहचानने में क्या अंतर है, क्या कहेंगे आप? जैसे ना श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि जब वर वधू का रिश्ता पक्का होता है, अरेंज्ड मैरिज, तो पहले देखते हैं खाली वन पीस में है ना, देखते हैं खाली, फिर उसके बाद में एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, तो फिर क्या है, पहचानना शुरू होता है। फिर असली पहचान तो शादी के बाद होती है। वो भी दृष्टवा वो अलग है, वो थर्ड लेवल दृष्टवा है। जैसे एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, हाउ मच इट कॉस्ट टू गेट मैरिड। पिताजी बोलता है, आई एम स्टिल पेइंग। तो जब वो आपस में एक दूसरे के विषय में सुनते हैं तो वो देखना अब अलग हो गया। इसलिए हमने कितनी बार इसकी व्याख्या की है, उसे कहते हैं चक्षु, शास्त्र चक्षु, कि शास्त्रों के द्वारा हम अपने चक्षु को उस प्रकार से ढालें। तो दृष्टवा यहां पर जब भगवान कह रहे हैं परम दृष्टवा, तो दृष्टवा केवल ये नहीं कि हमें इस भौतिक संसार को या आध्यात्मिक संसार को शारीरिक रूप से देखना है। आध्यात्मिक संसार का अर्थ है जैसे कि भगवान का अर्च विग्रह, भगवान के ग्रंथ, हरिनाम, जो भी कुछ है धाम भगवान के, उनको केवल हमें देखना नहीं, पहचानना, जानना है। कैसे? श्रवण के द्वारा। तब जाकर वो हायर टेस्ट हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए अब परम दृष्टवा, यदि इन दो शब्दों को लें जो भगवान ने कहे हैं, तो परम और दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ क्या हुआ अभी, देखना और पहचानना दोनों, और उसके साथ भगवान ने परम लगा दिया है। तो परम का अर्थ क्या होता है? परम ये भगवान का एक नाम है, उपनिषदों में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज अपनी स्तुतियों में भगवान को उल्लेख करते हुए, गुणगान करते हुए भगवान को परम कहते हैं। तो परम दृष्टवा अब इसका अर्थ यह हुआ कि वो दृष्टि जो कि परम भगवान की हो, भगवान के दृष्टिकोण की दृष्टि रखना, इसे कहेंगे परम दृष्टवा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था एक अर्थ कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कृष्ण कॉन्शियसनेस मींस टू सी दिस मटीरियल वर्ल्ड और टू सी द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड थ्रू द आईज ऑफ कृष्णा, हैविंग कृष्णाज विजन, उसे कहते हैं यहां पर परम दृष्टवा। फिर निवर्तते, जब वो दृष्टिकोण हमारा बन जाएगा जो कि भगवान साक्षात उनका दृष्टिकोण है, भगवान कैसे इस सृष्टि को देखते हैं उस दृष्टिकोण में हमें देखना है, भगवान कैसे हम जीवों को देखते हैं, भगवान कैसे 84 लाख योनियों को देखते हैं, भगवान कैसे आध्यात्मिक संसार को देखते हैं, हम जब उस दृष्टिकोण को प्राप्त करेंगे तो उसे कहते हैं परम दृष्टवा। और हम अपने जीवन में भी ये अनुभव कर सकते हैं कि हम जिस दिन इस कृष्ण भक्ति के संपर्क में आए तो क्या दृष्टि थी हमारी, है ना, क्या दृष्टि थी हमारी, और भक्ति में आने के पश्चात अब हमारी दृष्टि क्या हुई है। जैसे कि मैं ये जो 15-20 दिन इस प्रीचिंग के लिए गया था, तो संक्षिप्त रूप में आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूं। दो तो ये क्रूज शिप जिसे कहते हैं, नाव मतलब वो वाली नाव नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी, इसमें कुछ 1000 से ज्यादा उसमें रह रहे थे, केवल लोकल ट्रेन की तरह ऐसे खड़े नहीं थे, रह रहे थे, सबके लिए रहने की व्यवस्था। तो 4 स्टोरी जैसे बिल्डिंग होते ना, 4 फ्लोर्स, ऐसे 4 फ्लोर्स उसके थे, बहुत बड़ी ये शिप। तो 700 से अधिक वो क्राउड था, ऑडियंस था, जो कि वहीं पे वो लोग रह रहे हैं, और प्राइवेट था ये। तो वो लोग आए थे यही सब अलग अलग अपने जो परिवर्तन टाइप सेमिनार्स हैं वो सेमिनार्स सुनने के लिए। तो उस टाइप के सेमिनार सुबह शाम, और फिर दिन में, क्योंकि वो लोग वहीं पे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए और लोग अलग अलग प्रकार से और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वहां वहां से आए थे लोग। और नई नई समस्या अभी समझ में आती है कि जैसे कलयुग में हम लोग जो साइंस हैं वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो माया देवी भी नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो हालांकि बहुत कुछ हुआ, तो एक हाथ इंस्टेंस मुझे याद है ये परम दृष्टवा के संदर्भ में, कि एक दिल्ली के व्यक्ति जिनके सिगार की फैक्ट्री, सिगार आप जानते हैं, सिगार मोटी बीड़ी, तो वो सिगार की उनकी फैक्ट्री और ऐसे ऐसे सिगार, वो एक 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 सिगार 10,000 का इंपोर्टेड सिगार उनके पास था। तो मैंने एक सेमिनार लिया था जिसके अंदर इंटॉक्सिकेशन के ऊपर काफी, मैं एक आधा घंटा बोला था। तो ये व्यक्ति, इसने पूरा एक बॉक्स सिगार का लेके आया था वो ट्रिप के लिए। तो हम लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे डेक पर, डेक मतलब वो खुला रहता है वो आसमान को, तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तब हुआ क्या कि उसका वो पूरा सिगार पी रहा था उस समय, डिस्कस करते समय उसका पूरा वो पैकेट वैकेट था, उसने सुना वो लेक्चर हो, उसके बाद में बोल रहा था कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मुझे छोड़ना है, मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये इतना कंडीशनिंग है। तो उसका वो पूरा पैकेट डब्बा वो पड़ा हुआ था, बड़ा पैकेट था। तो समुद्र में बगल में ये मछुआरों की जो नाव होती है वो बहुत सी नाव वो वहां पर जा रही थी, तो क्योंकि इतनी मछलियां थी उन नाव में, तो होते ना बगुले, तो ये सारे बगुले मंडरा रहे थे नाव के ऊपर। तो अब मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूं, अचानक उस नाव से एक बगुला उड़ते हुए आया और इसका पूरा पैकेट चोंच में लिया, समुद्र में फेंक दिया। और ये मेरी तरफ देखकर भौचक्का, एक एक सिगार 10,000 का उसके अंदर था। और इसने कहा कि ये भगवान की योजना है। पहले तो उसको हार्ट अटैक ही आने वाला था, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं क्या बोल सकता हूं अभी, कि मैं जो बोल रहा था कि मुझे छोड़ना, मैंने कहा हाँ, जो एक बार उसने भगवान का नाम भी लिया था, रोज कीर्तन चल रहा था, मैंने कहा कि हरिष्य तद्दनम शनि, उस बगले को भगवान ने भेजा था। तो ये व्यक्ति, उसने जब ये इसके साथ हुआ तो वो उसके बाद उसने वहां पर वो, हालांकि तुरंत तो नहीं, लेकिन उसने अपने फोन कॉल शुरू किए, ईमेल्स शुरू किया कि मुझे अब वो फैक्ट्री बंद करनी है पूरी, जो 15 साल से जिस बिजनेस में वो है, ये एक इंस्टेंस से उसने डिसाइड किया कि मुझे वो फैक्ट्री अभी बंद करनी है। तो उनका फोन आया था, वो बोले कि ये पॉसिबल हो रहा है 80%, मैं पूरा जो भी कुछ नया वेंचर शुरू करने वाला हूं, और ये 15 साल से जो मैंने ये काम किया ये मैं पूरा छोड़ने वाला हूं। तो बगुले की कृपा, हालांकि भगवान की कृपा, जिसके वजह से उसके अंदर, तो वही मैं बोल रहा था कि ये हमारे टॉपिक्स हैं परिवर्तन। तो ये एक इंस्टेंस था। एक और इंस्टेंस मैंने फूड हैबिट्स के ऊपर लिया था, मीट ईटिंग के ऊपर। तो उसका टाइटल था हाउ अ 2-inch टंग कैन किल अ 6-foot मैन, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं मीट ईटिंग के वगैरह। तो वो सेमिनार के 3 दिन पश्चात ये व्यक्ति ये आया और ये कहा कि मैंने छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो उसने कहा कि उसको रात को सपने में उसने अब तक जितने अलग अलग प्रकार के जानवर खाए थे वो सारे जानवर जीवित रूप में उसको काटने आ रहे हैं। बोला यहां तक कि मछली भी वो पानी से निकलकर ऐसे ऐसे काटने आ रही, वो मछली फिर वो क्या क्या खाया, प्रॉन, केकड़ा, मेंढक, उसने तो पूरा लिस्ट निकाला कि सब मुर्गी बकरी सब आए उसके ऊपर काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं। बोला भाई इतना पसीने पसीने हो गया उस रात को कि मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया कि बस अब ये बिल्कुल ये काम करना नहीं है। तो उसने इसने ये सिगार छोड़ दिया, उसने अपना वो मांसाहार छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद की। और फिर क्योंकि वहां पर हरिनाम संकीर्तन मैंने जब यहां पर सुना कि आप लोग रोज हरिनाम के लिए निकल रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यहां पर भी डेक पे नगर संकीर्तन करते हैं, होली नवमी वीक चल रहा है, तो मैंने सबको कहा कि हम आज यूनिक तरीके से हरिनाम करेंगे। तो उधर तो पूरा वो म्यूजिक मंडली उन्होंने लाई थी, तो सब बैठ के अच्छे से करते थे अपना आराम से उनके रिक्लाइनिंग चेयर के ऊपर। तो मैंने अचानक फिर बाहर निकला, बोला सब लोग खड़े हो जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, हाथ ऊपर, सब लोग हाथ ऊपर, और सब लोग एक लाइन में, बोला एक लाइन नहीं तीन तीन लाइन बनाओ, तीन तीन लाइन बनाकर, वो इतना बड़ा डेक था एक आध किलोमीटर का, तो पूरे डेक में हम लोग दौड़ दौड़ कर हरिनाम संकीर्तन चिल्ला चिल्ला कर, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
और उनको ये इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि लास्ट के पांच दिन बोला कि हम ऐसे कीर्तन करेंगे, अभी ये अंदर अंदर बैठ के मजा नहीं आता, अभी ये बाहर चल। तो उसमें से तो कोई इतना कूद रहे थे कि मेरे को डर लग रहा था वो उधर समुद्र में नहीं कूद जाए। एक व्यक्ति, उसे मैंने जब जप के विषय में कहा कि जप भी रोज करना चाहिए माला के ऊपर, अब माला तो थी नहीं, तो ये व्यक्ति को अब माला के ऊपर जप करना है। तो वहां का जो बड़ा किचन था, मैं किचन में गया और मैंने वो नींबू लिए, नींबू के 108 माला बनाई, 108 मणि, कई बार हम भगवान को चढ़ाते ना, तो मेरे दिमाग में वही आया अभी, इसको कुछ ना किसी ना किसी तरीके से इसको माला पे करना। तो इतनी लंबी 108, कितना 108 नींबू, और भी वो बड़े बड़े नींबू थे, इतना बड़ा, तो उसने देखा इसके ऊपर। तो मैंने कहा जो भी है ये न के न प्रकार है, तो अपने कमरे में उसने इतनी बड़ी लटका रखी थी और वो रोज नींबू के ऊपर हरे कृष्णा 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 नींबू के ऊपर कर। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है हरिनाम, बता, बहुत खट्टा लग रहा है। तो फिर मैंने ये कहा कि देखो मेरी तो माला सुबह ही हो जाती है, तो वो लोग तो अपना फुर्सत से सब लोग उठते थे, तो फिर मेरी एक जो माला थी मैं उनको दे देता था, तो फिर वो पूरा रोटेट करते थे वो एक माला को, सुबह 7 बजे से लेके मेरे को रात को 12 बजे मेरी माला वापस मिलती थी। तो वो अच्छा था कि मुझे 7 बजे से पहले मेरे 16 माला पूरी करनी पड़ती थी, तो 7 बजे से पहले मैं अपनी 16 माला पूरी कर लेता था, फिर कस्टमर रेडी रहता था, अभी मेरे को दो, फिर वो अपना एक माला करेगा, वो बगल वाले को देगा, वो ऐसे करके करीब कम से कम 150 लोग पूरे दिन भर वो माला कर रात को मेरे को पूरा प्रोग्राम पूरा होने के बाद 11:30-12 बजे लाके देते, आपके लिए सुबह आप जिसको फिर से चार्जिंग पे रखो वो फोन को चार्जिंग में रखते और सुबह हम 7 बजे आएंगे। तो बहुत स्वीट एक्सपीरियंस था, और क्योंकि मैं वहां पर अपना कुकिंग खुद ही करता था, क्योंकि उनका तो पूरा 5-स्टार अरेंजमेंट था लंच डिनर वगैरह का, तो मैंने कहा कि नहीं आप मेरे लिए अलग से अरेंजमेंट कर दीजिए, मैं खुद कुकिंग करूंगा। तो लोग आके बीच बीच में देखते करता क्या, कुकिंग क्या करता है। तो एक हाथ फैमिलीज आए तो मैंने उनको, मैं जनरली खिचड़ी बनाता था, तो उनको खिचड़ी खिलाया, वो खिचड़ी इतनी अच्छी लगी, बोले ये तो सबके लिए होना चाहिए, बोले हमको ये खिचड़ी क्यों नहीं खिला रहे। जैसे कई बार इस्कॉन में ज्यादा साल हम हो जाते हैं तो हम लोग खिचड़ी से इतने उब जाते हैं कि हम बाकी देखते फीस्ट कुछ बनाए, ऐसे आज भी खिचड़ी बनाए, और जो फीस्ट खा रहे हैं बाहर इतना, वो लोग खिचड़ी बनी कि नहीं आई, तो वो लोग को खिचड़ी इतनी अच्छी लगी, तो अब देखो वो लोग को ये नहीं हो रहा था कि कैसे इनको बोलें कि हमारे लिए बनाओ। तो बोले कि अच्छा हम लोग ये, आप कुक को बता सकते हैं खिचड़ी कैसे बनता है अपना, जो उनके बड़ा किचन का जो। मैंने कहा नहीं मैं खुद बनाऊंगा। अरे फिर तो मैंने कहा लेकिन एक शर्त पर, आप लोग सब वो मुझे मदद करेंगे। तो ये लोग सब बड़े बड़े किसी के 1000 करोड़ टर्नओवर के कंपनी के मालिक ये लगे हैं, वो भोपला काट रहा है कोई, कोई गाजर काट रहा है, कोई बीन्स काट रहा है, सब काट रहे हैं। और उसके बाद में उनको लास्ट के 5-6 दिन रोज खिचड़ी बना के खिलाई, तो उनको खिचड़ी इतनी अच्छी लगी। तो एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जिसके अंदर आज का ये जो श्लोक है कि कैसे, और मैं प्रभुपाद को याद कर रहा था कि प्रभुपाद जो कि एक कार्गो शिप में जलदूत, हालांकि वो विष्णुदूत, वो विष्णुदूत लेकिन गए किसमें, जलदूत में। और वहां पर कोई उनके लिए कोई 5-स्टार अरेंजमेंट नहीं था श्रील प्रभुपाद के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जो 3 हार्ट अटैक वो जलदूत में उनको हुए, और उस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, एक कार्गो शिप में कितने महीने, यहां पर तो मैं परेशान हो गया, कहीं पे कोई लैंड कहीं पे दिखे। तो जब बंबई, जो मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, बंबई इतना अच्छा लगा कि लैंड देखने को मिला, भूमि देवी का दर्शन हुआ। तो वो श्रील प्रभुपाद इतने महीने उस जलदूत में, किस लिए, बद्ध जीवों को ये परम दृष्टवा देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद को याद करते हुए, और विशेष रूप से आप लोगों को याद करते हुए, और अपने श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को याद करते हुए, जो कुछ मुझसे बन पड़ा इनको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान मैं दे सका, और आशा करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, तो मैं भी एक दिन ये जो आज का श्लोक है कि परम दृष्टवा प्राप्त होगा, कि दिव्य रस को हम जब प्राप्त कर लेंगे जैसे हरिदास ठाकुर, तो फिर इस भौतिक संसार के जितने भी जड़ रस हैं उसमें हमें कोई रुचि नहीं होगी, बल्कि जैसे हरिदास ठाकुर ने उसे भक्त बना दिया, वैसे श्रील प्रभुपाद का आंदोलन क्या है कि इस भौतिक संसार के जितने भी अलग अलग प्रकार के रस हैं उनको हम भक्ति रसामृत सिंधु में मिला दें, और वही हमारे मनुष्य देह का उद्देश्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।